वेधवला पुस्तक छठी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, नमीयूणनंतजिनं, अनंतनाणेन दिठसौवट्ठं, कम्मपदेश विहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। अभी छठवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए। 68 बहुत बड़ा गैप हो गया ना, तो हम थोड़ा देख लेते अपना विषय भी उत्तर प्रकृति के संबंध में, यानी उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति का चल रहा है, थोड़ा हम देखते हैं यहाँ से शुरू हुआ है। अभी उसके हम अनुगम कौन कौन से वो देखते हैं। 50 पृष्ठ से शुरू होता है। उसको देख के आगे बढ़ेंगे हम। पहले में पहले कहा कि उसके स्वामित्व को कहते हैं, और उसमें हमेशा के जैसे उन्होंने 23 संयोग द्वार बताए, और फिर भुजगार पद निक्षेप वृद्धि स्थान वगैरह भी बताए। तो स्वामित्व में उन्होंने 11 अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। उसके आगे भागा भाग बताया, जीव भागा भाग और प्रदेश भागा भाग। उसमें से प्रदेश भागा भाग की बात चली, उत्तर प्रकृतियों में प्रदेश भागा भाग की अपेक्षा उन्होंने यह बताया है कि उसका डिवीजन, यानी उसके जब कर्म बनते हैं तो किस तरह से उसके विभाजन होता है उनमें। संचित ने बंधने के बाद जो सत्ता में है उसको संचित द्रव्य कहे गए। हाँ, आपका प्रश्न है ना, संचित द्रव्य किसको कहना। तो संचित द्रव्य ने अभी वर्तमान में जीव की सत्ता में जो कुछ है वो सब बंधने वाले भी सत्ता के ही कहलाएगा, क्योंकि बंद के समय वो तो आ गए ना उसमें संचय में, तो सत्ता में जितने पड़े हैं उसको संचित द्रव्य कहेंगे। हाँ, पूर्व के भी वहां तो विभाजित हो ही चुके हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं किस मात्रा में विभाजित हुए है। जैसे बंद के समय में है वैसे पूर्व जो बंधे हुए उसी मात्रा में है, उसी प्रोपोर्शन में है, इसलिए वही प्रोपोर्शन उन्होंने कहा है कि अनंत भाग सर्वघाती में दे दो। सर्वघाती में कितने प्रकृतियों को मिलेगा, हमने देखा था मिथ्यात्व और 12 कषाय, और देशघाती का किस में विभाजित हो जाए, 13 तो हो गए ना,
9 कषाय।
हाँ, तो 9 कषाय और संज्वलन के 4, उसका भी हमने विभाजित इन्हें विस्तार देखा था, ये भागा भाग में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे का जो अनुयोग द्वार है, ये तो भागा भाग की बात हुई थी ना। उसके बाद 59 पेज पर भागा भाग की अपेक्षा ही, वहां तो कहां कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बताया था, अब सबसे कम किस में है वो यहां 59 पृष्ठ पर, अप्रत्याख्यान और मान सबसे कम है, फिर क्रोध, फिर लोभ, माया और लोभ, उसके बाद प्रत्याख्यानावरण का नंबर, उसके बाद अनंत अनुबंधी का, और उसके बाद, क्योंकि ये सारे तो सर्वघाती है, इसलिए इनमें कम है। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, यहाँ तक के सभी सर्वघाती का विभाजन हुआ। उसके आगे फिर उन्होंने नौ कषाय लिए, जुगुप्सा, भय, हास्य, शोक, रति, अरति और वेद। और संज्वलन में मान, क्रोध, माया और लोभ, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब लोभ में ज्यादा, फिर माया में, फिर क्रोध में और फिर मान में। अब ये भी हमने विस्तार से देखा है। अब यही बात उन्होंने आदेश में भी बताई है। ये तो उत्कृष्ट की बात उन्होंने बताई। अब 64 पेज पर आते हैं। जघन्य की बात वहां से शुरू कर दी। पहले हमने उत्कृष्ट की बात देखी थी, अब जघन्य की बात। उसमें भी हमने देखा था। अभी जघन्य की बात क्या है? जघन्य किसकी बात चले? जघन्य प्रदेश की बात। उत्कृष्ट प्रदेश कब होते हैं? ये जो गुणित कर्मांशिक आदि होते हैं उनके उत्कृष्ट प्रदेश होते हैं। अब यहाँ जघन्य प्रदेश की बात चल रही है। तो जघन्य प्रदेशों में अभी अल्प बहुत्व वगैरह कहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 64 पृष्ठ पर, वहां भी ऐसे बताया कि 28 प्रकृतियों के सब जघन्य द्रव्य को लेकर, सेकंड लाइन वो पैराग्राफ के नीचे के, बुद्धि के द्वारा उस द्रव्य का एक पुंज करो, उसके अनंत खंड करके एक खंड को अलग रखो। अब जो शेष अनंत खंड है, यानी अनंत बहुभाग है, उसके संख्यात खंड करो, उसका फिर एक खंड अलग स्थापित करके बाकी संख्यात बहुभाग के फिर संख्यात खंड करना। और फिर जैसे हमने पहले देखा था अवलिका असंख्यात भाग देते रहना। अब देखो उसमें हमने नंबर लगाए थे, नीचे से पांचवी लाइन में लोभ संज्वलन, फिर दूसरे नंबर पर भय। ये जघन्य की बात चल रही है। जघन्य प्रदेश विभक्ति में अल्प बहुत्व बता रहे हैं। सबसे जघन्यों में सबसे जघन्य किसका होगा? मिला आपको? देखो 64 पेज पर नीचे से पांचवी लाइन में मिला। भाग में जोड़ने पर लोभ संज्वलन का भाग होता है, इसको हमने एक नंबर डाला था। अभी हमने जैसे पहले बहुभाग बहुभाग की बात की थी, तो उससे ज्यादा किस में होगा? यानी लोभ संज्वलन में ज्यादा दिया ना, पहले भाग में जोड़ने पर लोभ संज्वलन का भाग होता है, उसका आलाप तो उल्टा होगा। यानी इसमें सबसे जघन्य में से ज्यादा से ज्यादा है, कम नहीं। जघन्य में से ज्यादा माल किस में है? लोभ में। उसके बाद भय में। अभी 65 पेज पर पहली लाइन में जुगुप्सा, उसके बाद अरति और फिर शोक। अब बाद में रति का भाग होता है और दूसरा भाग हास्य का होता है। फिर स्त्री वेद, नपुसक वेद, नीचे क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन,
पुरुष वेद।
अब देशघाती द्रव्य का भागाभाग कहकर सर्वघाती का भी कहेंगे। पुरुष वेद का भी नीचे लिखा है, लास्ट लाइन में लिखा था। अब देशघाती द्रव्य का बता दिया उन्होंने, सर्वघाती द्रव्य में अभी बताते हैं। तो वहां भी जो भाग करो, अलग स्थापित करो वगैरह करने पर, पहले में पहले प्रत्याख्यान लोभ की बात ली उन्होंने, उसको मैक्सिमम दिया। आपको देखना है तो अभी उसी पैराग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे से छठी लाइन, 81 नंबर का पैराग्राफ में नीचे से छठी लाइन लास्ट में प्रत्याख्यान लोभ। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण माया, फिर क्रोध मान, उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोध और मान। ये 8 में डिवाइड हुआ। अभी उसके नीचे के पैराग्राफ में मिथ्यात्व का भाग होता है। उसके बाद आगे चलकर अनंतानुबंधी लोभ लिया, फिर माया लिया, क्रोध लिया और मान लिया। उसके पश्चात सम्यक्त्व और उस लास्ट में सम्यक मिथ्यात्व, यानी एक खंड सम्यक्त्व को लिया और बहुभाग सम्यक मिथ्यात्व को लिया, यानी सम्यक मिथ्यात्व को ज्यादा आया, सम्यक्त्व को सबसे कम आया। अब ये जो दे गया है तो अभी अल्प बहुत्व कहेंगे, कम से कम किसमें और अधिक से अधिक किसमें, किसमें बात चल रही है? जघन्य में अल्प बहुत्व कह रहे। तो यहाँ देखो 67 पृष्ठ पर 83 नंबर का आलाप को कहते हैं, पहले पॉइंट पर सम्यक्त्व का भाग थोड़ा है, सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुणा, फिर अनंतानुबंधी मान का असंख्यात गुणा, मान के बाद क्रोध माया वगैरह विशेष अधिक लेना, क्रोध का विशेष अधिक, माया का विशेष अधिक, लोभ का विशेष अधिक, फिर अभी अनंतानुबंधी में से मिथ्यात्वों को लेना, मिथ्यात्व का असंख्यात गुणा, उसके बाद अप्रत्यक्ष अनावरण मान असंख्यात गुणा, क्रोध विशेष अधिक, माया विशेष अधिक, लोभ विशेष अधिक, और फिर अप्रत्यक्ष अनावरण से प्रत्यक्ष अनावरण, उसका भी विशेष अधिक में लिया, मान को पहले, फिर क्रोध को, फिर माया को, फिर लोभ को। उसके बाद क्रोध संज्वलन का कितना लिखा है? अनंत गुना। क्यों? ये देशघाती है ना, अभी तक हम सर्वघाती देख रहे थे, सर्वघाती तो अनंत विभाग में से होते हैं। फिर क्रोध संज्वलन के बाद मान संज्वलन, पुरुष वेद, माया संज्वलन, नपुसक वेद, वो असंख्यात गुणा है, स्त्री वेद का विशेष अधिक, हास्य का असंख्यात गुणा, रति का विशेष अधिक, शोक का संख्यात गुणा, अरति का विशेष अधिक, जुगुप्सा का विशेष अधिक, भय का भी विशेष अधिक और लोभ का विशेष अधिक। ये 28 जो प्रकृतियां हैं उनमें अल्प बहुत्व बताया है, तो हम सब पढ़ चुके थे, अभी इतने दिन हो गए ना, बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया। इसी प्रकार सामान्य मनुष्यों में जानना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ क्षपणा होती है, उस हिसाब से वहां सामान्य मनुष्यों में लिया। मनुष्य पर्याप्तकों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, इतना विशेष है कि इनमें मनुष्य पर्याप्तकों में नपुसक वेद के आगे स्त्री वेद का भाग असंख्यात गुणा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त में नपुसक वेद और पुरुष वेद दो को ही ले रहे, और स्त्री वेद वाले को मनुष्य नि को अलग निकाला है। मनुष्यनियों में सम्यक्त से लेकर पूर्वोक्त विधान के अनुसार कहकर उसके बाद इस प्रकार कहना चाहिए, क्रोध संज्वलन के भाग से आगे मान संज्वलन का विशेष अधिक, माया संज्वलन का विशेष अधिक और स्त्री वेद का असंख्यात गुणा, नपुसक वेद का असंख्यात गुणा और पुरुष वेद का असंख्यात गुणा, हास्य का असंख्यात गुणा और उसके आगे तो वही जो पहले हम देख चुके हैं। अब इसके बाद अभी हम आज से जो विषय यहाँ से शुरू होता है, अभी तक हमने ओघ से बात देखी थी, अब आदेश से बात चलेगी, किनमें? जघन्य प्रदेश समूह की ही बात चलेगी। आदेश से नारकियों में मोनी की 28 प्रकृतियों के सबसे जघन्य प्रदेश समूह को लेकर उसके अनंत खंड करो। नारकियों में भी वो जो क्षपित कर्मांशिक होते हैं उन्हीं को लेना पड़े, क्योंकि जघन्य प्रदेश समूह चाहिए हमें। उनमें से एक खंड प्रमाण सर्वघाती द्रव्य है, उसका भागा भाग ओघ के समान जानना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा था भागा भाग संज्वलन लोभ में ज्यादा वगैरह। शेष संज्वलन नहीं, वो तो मिथ्यात्व की बात है ना, भागा भाग हमने सर्वघाती की बात कर रहे हैं। सर्वघाती में हमने प्रत्याख्यानावरण लोभ को पहला लिया था भागा भाग में, भागा भाग में 66 पृष्ठ पर। सर्वघाती का भागा भाग और उसका आलाप तो बाद में बताया था, मिला पहले प्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोधमान, उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोधमान, उसके बाद मिथ्यात्व, उसके पश्चात आनंदानुबंधी लोभ माया क्रोधमान, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व और लास्ट में सम्यक्त्व। ये ओग के समान कहा उन्होंने। शेष बहुभाग मात्र देशघाती द्रव्य है उसे लेकर मिला। अभी हम मूल पृष्ठ पर आते हैं, 68 पृष्ठ पर, हाँ दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। उसे लेकर अभी देशघाती द्रव्य को लेकर उसके संख्यात खंड करो, उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करके शेष बचे संख्यात खंड प्रमाण द्रव्य में आगम से विरोध न आए, इस तरह भागा भाग करने पर शोक का भाग थोड़ा होता है, अरति का भाग विशेष अधिक होता है, विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है। प्रकृति मात्र है ने? प्रकृति विशेष, ये प्रकृति के संबंध में थोड़ा विशेष है। विशेष का
प्रमाण इतना ही प्रमाण बताया ना उन्होंने।
हाँ हाँ।
अरति का जितना द्रव्य है
हाँ।
वही विशेष अधिक में लेना।
अरति का भाग विशेष अधिक है, जुगुप्सा का भाग विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण रति के बंधक काल में संचित हुआ द्रव्य मात्र है। भय का भाग विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है। मान संजुलन का भाग विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण चतुर्थ भाग मात्र है।
यह जो ये विशेष का प्रमाण जो प्रकृति प्रमाण बताया है वो संक्रमण की अपेक्षा बताया है कि यहाँ पे तो सपना
नहीं, नहीं, नहीं। देखो अभी ये तो जघन्य की बात चल रही है। हाँ जघन्य में जब हम कहेंगे देखो कैसे लिए उन्होंने, पहले तो संख्यात भाग किए उन्होंने, नारकियों में बात चल रही है, नारकियों में पहले संख्यात भाग किए। देखो शोक का भाग थोड़ा है, अरति का विशेष अधिक है,
और विशेष का प्रमाण जो प्रकृति प्रमाण ही लिया उन्होंने
प्रकृति मात्र।
हाँ, तो प्रकृति मात्र मीन्स जो अरति का जो प्रमाण है वही प्रमाण से लेना है कि उस कोई दूसरा प्रमाण?
समझ में नहीं आ रहा। पयड़ी अरति भागो विशेषाया पयड़ी विशेषो, यानी वो प्रकृति के
प्रमाण जितना ही है,
अरति और शोक में जो कोई पॉसिबल है उतना, क्योंकि अरति शोक एक साथ बनते हैं।
हाँ।
बन तो एक साथ है उनका, परंतु प्रकृति की विशेषता के कारण उनका जो कोई भाग ज्यादा है उसको लेना, क्योंकि हमने पहले बनते समय कैसे देखा था, पांच भाग करते हैं ना बंद में जब देते हैं तो किस तरह से दिए थे याद है? पहला बहुभाग वेद नौ कषाय में कैसा लिया था?
सबसे ज्यादा दिया
वेद में, ज्यादा लिया था
और
ये वेद में ने तीनों वेद में उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। फिर रति अरति को, उसके बाद हास्य शोक को। हाँ तो उसमें प्रकृति मात्र विशेष जो अधिक था ना, तो जघन्य में भी ऐसा ही रहेगा।
विशेष अधिक मीन्स यहाँ पे जो ये प्रकृति मात्र विशेष अधिक बताया है वो जो ये प्रकृति बन रही है वो अपेक्षा से है कि कोई दूसरा प्रमाण बता रहे हैं?
विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है, नहीं जैसे हमने पहले देखा था। देखो जुगुप्सा का कितना है, देखो हमने पहले कैसे देखा था, शोक और हास्य एक साथ रखा था, यहाँ हास्य को अलग बताई नहीं है।
हाँ।
उसके बाद हमको याद है ना, पहले वेद को दिया।
हाँ।
फिर रति अरति को दिया।
हाँ।
फिर हास्य शोक को दिया। भय जुगुप्सा तो फिर जुगुप्सा, फिर भी वो निरंतर बंधने वाली,
वो तो
भय और जुगुप्सा निरंतर बंधने वाली है। और रति या रति, शोक या हास्य, ऐसे बंधेंगे। इसलिए शोक का थोड़ा लिया, अरति का विशेष अधिक लिया, विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है, प्रकृति मात्र है, प्रकृति के कारण जितना विशेष अधिक है उतना होगा उसका, विशिष्ट प्रकृति में जितना विशेष होता है उसको विशेष अधिक लिया। और जुगुप्सा में कितना लिया,
विशेष अधिक,
क्यों, रति के बंध काल में संचित हुआ द्रव्य मात्र है, जुगुप्सा और भय तो निरंतर बनते हैं, वहां अरति बंध रहा है तब भी बंधेगी, रति बंध रहा है तब भी बंधेगी, तो अरति का द्रव्य तो अपने काल में जितना बंधा है उतना है, अरति का होगा या रति का होगा, परंतु जब रति बंध रही है तब भी जुगुप्सा तो बंध ही रही है, ये बात यहां बताना चाहते, यानी अरति का कितना है, अरति के बंधक काल में जितना बांधा है उतना है, और जुगुप्सा का रति अरति दोनों के बंध काल में बनता है, तो कितना अधिक है, जितना रति के काल में बन रहा है उतना अधिक है, ये कहना चाहते हैं। भय का भाग विशेष अधिक है। अब विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है, ऐसा कहने का प्रयोजन ये है, जुगुप्सा के साथ भय भी बंध ही रहा था, तो प्रकृति विशेष के कारण जितना अधिक होता है उतना है, प्रकृति मात्र लिखा और ऊपर पयड़ी विशेषो लिखा, यानी विशिष्ट प्रकृति में जितना अधिक होता है उतना अधिक लेना। मान संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण चतुर्थ भाग मात्र है, कितना अधिक लिया, पहले में पहले दो में डिवाइड किया था कषाय नौ कषाय में, और फिर उसका वो पांच में डिवीजन हुआ। क्रोध संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है। अब यहाँ भी ऐसा ही लेना, प्रकृति मात्र ने पहला किसको दिया था मैक्सिमम, लोभ को, फिर माया को, फिर क्रोध को, और फिर मान को। माया संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है। लोभ संज्वलन का भाग विशेष है, विशेष का प्रमाण प्रकृति मात्र है, यानी वो विशिष्ट प्रकृति के कारण जितना अधिक बनते ही समय डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उतना ज्यादा लेना। देखो, अब पहले घटाए हुए संख्यात वे भाग मात्र द्रव्य के फिर भी संख्यात खंड करो, पहले क्या किया था, अनंत भाग किए थे, सर्वघाती वाला अनंत भाग निकाला था,
और
बाकी जो देशघाती बहुभाग था
उसका संख्यात भाग किया,
उसके संख्यात भाग किए थे, एक भाग अलग निकाला था और बहुभाग को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद जो पहले घटाया हुआ संख्यात वा भाग मात्र द्रव्य के फिर भी संख्यात खंड करो, उनमें से एक खंड को पृथक स्थापित करके शेष संख्यात खंडों को लेकर उनमें आवली के असंख्यात वे भाग से भाग देकर लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को लेकर शेष सब द्रव्य के दो समान पुंज करो, उनमें से एक पुंज में पहले घटाकर ग्रहण किए गए एक भाग प्रमाण द्रव्य को जोड़ दो तो रति का भाग होता है, ये रति की बात यहाँ आई, दूसरा पुंज हास्य का भाग होता है, या ओरिजिनली जो संख्यात वा भाग निकाला था ना अलग, संख्यात वा भाग अलग निकाला था और संख्यात बहुभागों को शोक अरति जुगुप्सा भय और फिर संज्वलन सभी इनमें डिवाइड किया था। अब ये जो एक संख्यात वा भाग अलग निकाला था, अब उसमें से दो रति और हास्य के दो भाग किए, फिर पहले घटाए हुए संख्यात वे भाग मात्र द्रव्य के असंख्यात खंड करो, उनमें से बहुत खंडों को लो, यह पुरुष वेद का भाग होता है। फिर बाकी बचे एक भाग मात्र द्रव्य के संख्यात खंड करो, उनमें से बहुखंड प्रमाण द्रव्य नपुसक वेद का भाग होता है, बाकी बचा एक भाग मात्र द्रव्य स्त्री वेद का होता है। अब यहाँ पर सबका जोड़ करके आलाप को संक्षेप से कहते हैं, यानी किसको कितना भाग देना, पहले इतना निकालो फिर इतना निकालो फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर हमारे ख्याल में नहीं आता सबसे कम किस में गया, तो भी आलाप कहेंगे। तो सम्यक्त्व का भाग थोड़ा है, एक नंबर। सम्यक मिथ्यात्व का भाग असंख्यात गुणा है। अनंतानुबंधी मान का भाग असंख्यात गुणा है। क्रोध का भाग विशेष अधिक है। माया का भाग विशेष अधिक है। लोभ का भाग विशेष अधिक है। मिथ्यात्व का भाग असंख्यात गुणा है। अप्रत्याख्यानावरण मान का भाग असंख्यात गुणा है। क्रोध का भाग विशेष अधिक है। माया का भाग विशेष अधिक है और लोभ का भाग विशेष अधिक है। फिर प्रत्याख्यानावरण मान का भाग विशेष अधिक है। क्रोध का भाग विशेष अधिक है। माया का भाग विशेष अधिक है और लोभ का भाग विशेष अधिक है। स्त्रीवेद का भाग अनंत गुणा है, क्योंकि पहले कौन से लिए थे, सर्वघाती लिए, यानी 13 और वो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व को मिलकर 15 हो गए। इसमें से स्त्रीवेद को लास्ट में दिया था, याद है ना, सबसे थोड़ा, तो देशघाती में सबसे थोड़ा है, फिर भी सर्वघाती से अनंत गुणा है। ये 16वें नंबर पर स्त्रीवेद का भाग अनंत गुणा है। नपुसक वेद का भाग संख्यात गुणा है, बराबर है ना, क्या चुक गया कुछ? देखो पहले सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व लिए, अनंतानुबंधी के 4 लिए, 15 तो वहां तो बराबर थे, तो स्त्रीवेद में 16 आया। 17 नपुसक वेद का भाग संख्यात गुणा, पुरुष वेद का भाग असंख्यात गुणा, ये 18 नंबर। हास्य का भाग संख्यात गुणा, रति का भाग विशेष अधिक है, शोक का भाग संख्यात गुणा है, अरति का भाग विशेष अधिक, जुगुप्सा का भाग विशेष अधिक, भय का भाग विशेष अधिक। अब मान संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, क्रोध संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, माया संज्वलन का भाग विशेष अधिक है, और लास्ट में लोभ संज्वलन का भाग विशेष अधिक, 28 नंबर। इस प्रकार पहली से लेकर 7वीं पृथ्वी में, उसके बाद कॉमा लगाओ, सब तिर्यंच मनुष्य पर्याप्त सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सर्वार स्थिति तक के देवों में जानना चाहिए। सामान्य मनुष्यों को अलग निकाला था, उनमें क्षपणा होती है इसलिए वहां पर अलग अल्पबोध है, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए।
क्या तो ये पहली पृथ्वी नहीं है, तो पहली पृथ्वी में तो सम्यक तो के जो सपना करता है वो अपेक्षा वहाँ पे ये जो आप सम्यक तो का द्रव्य या सबसे कम लिया तो वो हमेशा सबसे कम रहेगा, क्योंकि जो सपना करने वाला जो जो
जघन्य में जघन्य लिया है,
हाँ जघन्य में भी सपना करने वाला तो होगा ही,
हाँ तो उसका कम ही होगा ना।
नहीं, जब भी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप हो जाता है तब हाँ। उसका द्रव्य तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, सपना की अपेक्षा
होगा, पर सपना के अंतिम समय में कम ही होगा कि नहीं होगा? सपना में भी अंतिम समय लेना उसका, जिसका जहां जघन्य होगा उसको वहां जघन्य लेना है। अभी वो स्वामित्व नहीं आया ना अभी हमारा,
हाँ।
जघन्य का स्वामित्व जब हम देखेंगे तो जगन्य का स्वामित्व कहाँ देखते हैं? उद्वेलना में देखना कि कहाँ, वो देखेंगे हम आगे चलकर। हमने स्वामित्व नहीं देखा ना अभी?
नहीं देखा है अभी।
हाँ, तो जब स्वामित्व देखेंगे, जगन्य का स्वामित्व, हाँ, मनुष्यों को छोड़कर अन्य को लिया है। स्वामी तो बहुत आगे है, 132। चलो जब आएगा तब क्रम से देखेंगे। क्योंकि अभी तो हमारा शुरू हुआ ना। देखो इस प्रकार उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति में भागा भाग समाप्त हुआ। वो किसको होता है वो तो बाद आगे आएंगे, स्वामित्व में आएंगे। अब आते आगे, ये भी एक ही अनुगम हुआ ना, 50 पृष्ठ से लेकर पहला भागा भाग हुआ। अब ये दूसरा सर्व विभक्ति और नौ सर्व विभक्ति, 2 और 3, ये हमारे 50 पृष्ठ से चल रहा है भागा भाग। ये भागा भाग को पहला अनुगम कहा था, सर्व प्रदेश विभक्ति को दूसरा, नौ सर्व विभक्ति को तीसरा कहेंगे। इस अनुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ से मुनि के 28 प्रकृतियों के सब प्रदेश समूहक सर्व विभक्ति कहते हैं, जहाँ सभी प्रकृतियों के सभी प्रदेश है उसको कहेंगे सर्व विभक्ति। इसको इससे कम को नो सर्व विभक्ति कहते हैं, यानी मैक्सिमम पॉसिबल जितने प्रदेश हो सकते उतने हो गए तो सर्व विभक्ति कहेंगे, सर्व प्रदेश विभक्ति। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। उत्कृष्टानुत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट लिया, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, 4 और 5 नंबर। इससे अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि की 28 प्रकृतियों के सबसे उत्कृष्ट प्रदेश समूह को उत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं और उससे कम को अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। हाँ, उत्कृष्ट में जो लास्ट वाला है उसको उत्कृष्ट कहेंगे और सर्व में भी सभी है उसको सर्व कहेंगे। हाँ, 100वें नंबर को उत्कृष्ट कहेंगे और यहाँ 1 से 100 तक सभी सभी है तो कहेंगे सर्व है। अब जगन्य अजगन्य अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि की 28 प्रकृतियों के सबसे जगन्य प्रदेश समूह को जगन्य विभक्ति कहते हैं और उससे अधिक प्रदेश समूह को अजगन्य प्रदेश विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा 4 लिए एक साथ, 8, 9, 10 और 11। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 8 कषाय और 8-9 कषायों की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? तो कहते सादी है और अध्रुव है। क्यों? उत्कृष्ट की बात चल रही ना, उत्कृष्ट भी, क्योंकि उत्कृष्ट को शादी होगी ही, वैसे अनुत्कृष्ट भी शादी वाला ही होगा, क्योंकि बीच में उत्कृष्ट है तो वो अनुत्कृष्ट भी शादी वाला होगा।
यहाँ पे कसाई 8 ही लिया तो दूसरे कसाई की शादी नहीं हो सकती है।
देखो किस में चल रही बात,
उत्कृष्ट में।
उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति और जघन्य प्रदेश विभक्ति, तो सादी होगी और अध्रुव होगी। और अजघन्य प्रदेश विभक्ति क्या है? वो तो अनादि से है ना, जो जघन्य कभी नहीं हुई है
वो तो
अनादि से है। ध्रुव है कि अध्रुव है? तो अभव्य में तो ध्रुव होगी, भव्य में अध्रुव होगी।
नहीं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आठ कषायों को लिया, आठ उत्कृष्ट में है,
आठ कषाय, आठ नौ कषायों को ले लिया,
उसमें
उनका कथन एक समान है। बाकी की बात देखेंगे अभी।
बाकी के आठ कषाय में उत्कृष्ट कभी होगी नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट होके पीछे अनुत्कृष्ट हो जाएगी तो शादी हो जाएगी।
देखो पहले सुनो तो सही। अब पुरुष वेद और चार संज्वलन, पुरुष वेद और चार संज्वलन, इनकी उत्कृष्ट और जघन्य, अनुत्कृष्ट को छोड़ा है। उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है कि अध्रुव है? तो सादी और अध्रुव है, क्योंकि पुरुष और चार संज्वलनों को किसके होगी? सपना करने वालों की होगी ना,
जब लास्ट समय,
हाँ, इसलिए सादी और अध्रुव का। अनुत्कृष्ट तो कह सकते अनादि से ही है। और जघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? और जघन्य, जो जघन्य कभी हुई ही नहीं उसको क्या कहेंगे? अनादि से है। और उसमें ध्रुव अध्रुव दोनों बताएंगे। अब अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? तो सादी भी है, अनादि भी है। जिसके उत्कृष्ट नहीं हुई उसको तो अनादि कहेंगे, और सादी एक बार उत्कृष्ट होके फिर अनुत्कृष्ट हो जाएगी तो सादी कहेंगे उसको। ध्रुव और अध्रुव दोनों कहा? इतना विशेष है कि लोभ संज्वलन की अजघन्य प्रदेश विभक्ति में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के समान भंग होते हैं। यानी वो भी सादी भी कहलाएगी, अनादि भी कहलाएगी। सम्यक्त और सम्यक मिथ्या तो प्रकृति में चारों विभक्तियां, कौन सी चार? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, ये चार क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? तो कहते हैं सादी और अध्रुव है। क्यों ध्रुव और अध्रुव दोनों क्यों नहीं कहा? हाँ, ये प्रकृतियां किसके होगी? भव्य को, और वो भी जिसने सम्यकता प्राप्त किया उसी के होगी, इसलिए सादी और अध्रुव कहा। अनंतानुबंधी चतुष्क में अनंतानुबंधी को अलग निकाला था ना, यहाँ जो आठ कषाय कही थी वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कही थी। संज्वलन को अलग बताया था, अब यहाँ अनंतानुबंधी को बताते हैं। अनंतानुबंधी, अभी इसमें विशेषता क्या है? विसंयोजना भी होती है, फिर संयोजना भी होती है। इसमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? तो सादी और अध्रुव, क्योंकि जघन्य जो होगी विसंयोजना में भी होगी ना, तो सादी और अध्रुव। अजघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? सादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। अब आदेश से नारकियों में मुनि की 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है अथवा अध्रुव है? सादी और अध्रुव है। क्यों?
एक समय के लिए वो,
अरे नहीं, वो मार्गणा ही सादी है ना, और मार्गणा ही अध्रुव है, इसलिए। इसी प्रकार चारों गतियों में जाना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब विशेषार्थ देखते हैं। मिथ्यात्व मध्य की आठ कषाय लिख दिया इन्होंने, और पुरुष वेद के सिवा आठ नौ कषाय, पहले हमने आठ कषाय और आठ नौ कषाय इतना ही देखा था। इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट सत्व कादाचित कहे। कादाचित का अर्थ क्या है? हमेशा नहीं होता है। तथा इनका जघन्य प्रदेश सत्कर्म क्षपणा के अंतिम समय में होता है। अतः उक्त प्रकृतियों का कौन कौन से? मिथ्यात्व, आठ कषाय और आठ नौ कषाय पुरुषवेद को छोड़कर। अतः उक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश सत्कर्म सादी और अध्रुव है। ख्याल में आई बात? उत्कृष्ट कभी कभी होगा, अनुत्कृष्ट भी कभी होगा, तो सादी है। और फिर जो उनका जघन्य कब होता है? सपना के समय, वो भी सादी होगा। किंतु इन प्रकृतियों का अजघन्य प्रदेश सत्कर्म अनादि ध्रुव और अध्रुव है। अनादि से तो सबको है, अभव्यों में ध्रुव कहेंगे और भव्यों में अध्रुव कहेंगे। क्षपणा के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश सत्कर्म के प्राप्त होने के पूर्व तक अनादि से अजघन्य प्रदेश सत्कर्म रहता है। यानी वो उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट, दोनों को अजघन्य ही कहेंगे हम। जघन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में सादी हो सकता है, परंतु वो सब अजघन्य ही कहलाएगा, इसलिए तो अनादि है। तथा अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है। पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ गुणित कर्मांश वाला जो जीव जब स्त्री वेद की अंतिम फाली को पुरुष वेद में संक्रमित करता है, तब एक समय के लिए पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यही जीव जब पुरुष वेद और छह नौ कषायों के द्रव्य को संज्वलन क्रोध में संक्रमित करता है, तब संज्वलन क्रोध की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यानी अलग अलग पॉइंट पर होगी, तो किसकी क्या ज्यादा है वो तो हम देख चुके थे। अब यहाँ तो ये उत्कृष्ट कब होती है उसकी बात चल रही है। हाँ, क्रोध की होती है। यही जीव जब संज्वलन क्रोध के द्रव्य को संज्वलन मान में संक्रमित करता है, तब संज्वलन मान की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन मान के द्रव्य को संज्वलन माया में संक्रमित करता है, तब संज्वलन माया की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। तथा जब यही जीव संज्वलन माया के द्रव्य को संज्वलन लोभ में संक्रमित करता है, तब संज्वलन लोभ की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। तथा इन पांचों का, ये तो उत्कृष्ट की बात बताई, इन पांचों का कौन पांच?
चार संज्वलन और पुरुष वेद।
हाँ, पुरुष वेद और चार संज्वलन, जघन्य प्रदेश सत्कर्म अपनी अपनी क्षपणा के अंतिम समय में होता है। उत्कृष्ट को भी आदि क्यों है वो बता रहे, क्योंकि उस विशिष्ट समय पर उसको उत्कृष्ट होता है। स्त्री वेद का जब पुरुष वेद रूप संक्रमित होता है, तब उसका उत्कृष्ट होगा। बाद में तो उसका भी संक्रमण अन्य रूप से होगा ना, इसलिए कम होता चला जाएगा। क्योंकि ये उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश सत्कर्म एक समय के लिए होते हैं, ये बात मुख्य बात। क्या कहा? उत्कृष्ट का भी समय बता चुके वे कि जो उसमें अन्य अन्य उसके संक्रमित होता है, तब उसको उत्कृष्ट कहेंगे। और जघन्य प्रदेश सत्कर्म तो अपनी अपनी क्षपणा के अंतिम समय में, इसलिए सादी और अध्रुव है। तथा इन पांचों प्रकृतियों की अजघन्य प्रदेश विभक्ति अनादि ध्रुव और अध्रुव है। क्षपणा के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश सत्कर्म के प्राप्त होने के पूर्व तक अनादि से अजघन्य प्रदेश सत्कर्म रहता है, इसलिए तो वह अनादि है। तथा अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है। यहाँ इतनी विशेषता है कि संज्वलन लोभ का जघन्य प्रदेश सत्कर्म, संज्वलन लोभ का जघन्य कब होगा?
सपना के अंतिम समय।
देखो, संज्वलन लोह का नहीं, क्षपणा के अंदर तो वो सारा उसमें आ जाए आता है।
ये तो सूक्ष्म लोभ
हाँ देखो, संज्वलन लोभ का जघन्य प्रदेश सत्कर्म क्षपित कर्मांश के, क्षपित कर्मांश लिया क्योंकि वो पहले ही क्षपणा करके आया। अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में होता है, अतः इसके अजघन्य प्रदेश सत्कर्म का उक्त तीनों के साथ साधे विकल्प भी बन जाता है। क्या कहते हैं, सब में हमने सादि कब लगाया, अनादि का लगाया, अजगन्य जो है अनादि का लगाया था, क्योंकि जिनके जिनके क्षपणा के समय मिनिमम है प्रदेश, उसके लिए वो एक समय छोड़कर अनादि से अजगन्य। संज्वलन लोभ में भी अजगन्य तो अनादि से है ही है, परंतु उसमें सादि भी है। क्यों? अधः प्रवृत्त करण में उसका जघन्य हो जाता है और बाद में फिर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में ये टर्न होता है, इसलिए उसका बढ़ता चला जाता है। इस कारण उसका जो अजगन्य है वो सादी भी कहलाएगा। ख्याल में तीन बात तथा इन पांचों प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का है। इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के स्वामी का उल्लेख पहले किया ही है, अभी अभी बताया था ना विशेषार्थ में। उसके पहले अनुत्कृष्ट अनादि है और उत्कृष्ट के बाद सादि है। ये ख्याल में आई? जैसे संज्वलन लोम में जघन्य के बाद फिर अजघन्य होता है, वैसे ही इन पांचों में उत्कृष्ट के बाद फिर अनुत्कृष्ट हो जाएगा। अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है। हाँ, उत्कृष्ट है, उसके बाद फिर अनुत्कृष्ट हो जाएगा, यानी उसके लिए भी सादी है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता सादी और शांत है।
यहाँ पे पहले इसे बताया, हाँ, इन पांचों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म अपनी अपनी सपना के अंतिम समय में होता है।
हाँ,
और यहाँ पे संज्वलन रोग का अत प्रवृत्त करण के अंतिम समय में भी बताया, तो दोनों समय में समान हो जाएगा जघन्य वाला।
देखो, संज्वलन लोभ का जघन्य कहाँ लिखा?
पहले आगे के पेज पे हमने देखा, इन पांचों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म अपनी अपनी सपना के अंतिम समय में होता है।
हाँ,
नीचे से चौथी लाइन
बराबर।
और लोभ का यहाँ पे अलग से बताया, संज्वलन लोभ
का इसलिए बताया कि बीच में उनका क्षपित कर्मांश के अध प्रवृत्त में भी जघन्य हो जाता है और फिर बाद में फिर अजघन्य होकर लास्ट में फिर जघन्य होगा, इसलिए उसको लिया। अन्य तो जघन्य, हाँ, क्षपित कर्मांश के लिए तो ये खास मिनिमम पॉसिबल किसके होगा, तो क्षपित कर्मांश के ही होगा, तो ये अधकरण में तो होता ही है, बाद में फिर जब संज्वलन क्रोध मान उसमें ट्रांसफर होते रहते हैं तो फिर वो प्रदेश बढ़ जाएंगे, अंत में फिर कम हो जाएंगे। देखो, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता सादी और शांत है, इसलिए इनके चारों पद सादी और अध्रुव हैं। ये तो आसान है ना समझने। अनंतानुबंधि के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कादाचित कहे तथा जघन्य क्षपणा के अंतिम समय में होता है, इसलिए तीनों पद सादी और अध्रुव हैं। किंतु अजघन्य पद में सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं। ये कैसे वो बताएंगे? देखो, अनंतानुबंधी की विषय योजना होने के पूर्व तक अजगन्य पद अनादि है, और विसंयोजना के बाद अनंतानुबंधी से पुनः संयुक्त होने पर सादी है। ये क्या कहना चाहते समझ में आए? किसकी बात चल रही है? ओ जघन्य, जघन्य कब होता है? विसंयोजना के अंतिम समय में, उसके पहले क्या है? अजघन्य है। कब से हो सकता है? अनादि से।
पहली बार जब
हाँ। अब एक बार विसंयोजना के बाद फिर संयोजना होगी तो उसको हम शादी कहेंगे। तो अभव्यों की अपेक्षा ध्रुव और भव्यों की अपेक्षा अध्रुव है, यह तो ओघ से विचार हुआ। आदेश से विचार करने पर नरक गति आदि जो मार्गणाएं अनित्य है, अर्थात एक जीव के बदलती रहती है, उन मार्गणाओं में पहले भी हमने देखा था ना, मार्गणा ही अनित्य है, उससे सादी है। उत्कृष्ट आदि चारों पद सादी और अध्रुव है, किंतु अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गणा में, अचक्षु दर्शन तो अनादि से है, सब में सभी मार्गणाओं में अचक्षु दर्शन तो होगा ही, ओघ के समान व्यवस्था बन जाती है। हाँ, इतना विशेष है कि भव्य के ध्रुवपद नहीं होता। यद्यपि अभव्य मार्गणा नित्य है, किंतु उसके आदेश उत्कृष्ट आदि पद कादाचित कहे, आदेश उत्कृष्ट यानी उस विशिष्ट मार्गणा में उत्कृष्ट, इसलिए वहां चारों पदों के सादी और अध्रुव ये दो पद ही बनते हैं। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का निर्देश करने वाले चूर्णी सूत्र के द्वारा सूचित अनुयोग द्वारों का कथन करके अब मिथ्यात्व के स्वामी को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये कहां से बात हमने देखी थी? 50 पृष्ठ से देखी थी ना। देखो यहाँ क्या लिखा था, सूत्र नंबर 1 उत्तर प्रकृति में, कि उत्तर प्रकृति विभक्ति में एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व कहते हैं। कहते हैं कहाँ बताया नहीं, वो अब बताने जा रहे हैं, स्वामित्व अब बताएंगे। तो बीच में ये क्यों? तो उच्चारणा के अनुसार उन्होंने सारे अनुयोग द्वार कौन कौन से होते उसको बताया था, भागा भाग अल्पभूत्व वगैरह बता चुके। हाँ, ये आपने जो बता रहे हैं, ये हम हमने जो 50 पृष्ठ पर देखे थे वो ध्रुव अध्रुव वगैरह देखे थे, अब एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व 12 नंबर का अनुयोग यहाँ देखेंगे हम। तो ये 11 अनुयोग द्वार तो उन्होंने बस वहां गर्भित उसी में जान लिया। ऊपर देखते हैं, मिच्छत्तस्य उक्कस्य पदेस्य विहत्तिकस्य, स्वामित्व की बात अभी बताएंगे किसके होती है, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, क्या नारकी के होती है, तिर्यंज के होती है, मनुष्य के होती है अथवा देव के होती है, इस सूत्र के द्वारा प्रश्न किया गया है। इस प्रकार के संदेह का विनाश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बादर पुढ़वी जीवेशु कम्मठिदि मच्छिदाऊ तदो उवट्ठिदो तस्काये वे सागरोवम सहस्राणी सादिरेयाणी अच्छिदाऊ अपच्छिमाणी 33 सागरोवमाणी दोभवग हणानी तथ अपच्छिमे 33 सागरोवमीय नेरय्य भवगहणे चरिम समय नेरय्यस तस्समिच्छत्तस्य उक्कस्यम पदेश संतकम्मम। क्या कहते हैं? जो बादर पृथ्वी का एक जीवों में कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा, कर्म स्थिति यानी कितने लेना? 70 कोड़ा कोड़े। मिथ्या तो की बात चल रही है यहाँ पर। सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, उसके बाद वहां से निकला, त्रस्काय में कुछ अधिक 2000 सागर का तक रहा, ये त्रस की उत्कृष्ट स्थिति, वहां अंतिम नरक संबंधी 33 सागर की स्थिति को लेकर दो भव ग्रहण किए, अंतिम ने लास्ट में जो पॉसिबल है 33 सागर के दो भव ग्रहण किए। उन दो भवों में से जब वह जीव 33 सागर की स्थिति वाले नरक संबंधी अंतिम भव को ग्रहण करके अंतिम समयवर्ती नारकी होता है तब उसके मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है। हमने देखा था ये गुणित कर्मांशिक वाला लिया था। आगे अब इसका विवेचन चलेगा। बादल पृथ्वी का एक जीव में कर्म स्थिति पर्यंत रहा ऐसा कहने से त्रसों की काय स्थिति से हीन कर्म स्थिति काल तक रहा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से 2000 सागर कम करना। त्रसकाय की स्थिति से हीन कर्म स्थिति को कर्म स्थिति क्यों कहा है उसका समाधान द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा उपचार से कर्म स्थिति कहा है। यानी यहाँ जो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर देखा था उसमें -2000 सागर शंका बादर पृथ्वी का एक जीव में ही क्यों भ्रमण कराया है समाधान अत्यंत बहुत योग के द्वारा बहुत प्रदेशों का ग्रहण करने के लिए बादर पृथ्वी का एक जीव में भ्रमण कराया है। एक इंद्रियों में से बादर पर्याप्त में बादर पृथ्वी का एक लिया शेष एक इंद्रिय जीवों के योग से बादर पृथ्वी का एक जीवों का योग असंख्यात गुणा होता है यह किस प्रमाण से जाना है। इसी सूत्र से जाना अर्थात यदि ऐसा न होता तो उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के ग्रहण करने के लिए शेष एक इंद्रियों को छोड़कर बादर पृथ्वी कायकों में ही भ्रमण न कराते। इसी से स्पष्ट है कि उनसे इनका योग असंख्यात गुणा होता है। शंका बादर पृथ्वी कायकों में तीव्र संक्लेश के द्वारा बहुत द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए उनमें भ्रमण कराया है ऐसा क्यों नहीं कहते हो। समाधान इसके लिए भी हो क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि हमने देखा था ना संक्लेश होता है तो वहाँ उत्कर्षण बन क्योंकि वहाँ की स्थिति अधिक बनती है तो उत्कर्षण होते ही रहते हैं। हाँ पन सत्ता परंतु अभी उत्कर्षण होता रहेगा तो यही जीव आगे जाना है ना। कर्म स्थिति प्रमाण में लिया 70 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले समय से जो लेकर बंधेंगे वो संचित द्रव्य कहलाएगा। अभी उसकी मैक्सिमम स्थिति कितनी है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से 2000 सागर कम रह गए हैं तभी से पृथ्वी का एक में से त्रस में आएगा। तो उसमें ज्यादा टाइम रहा वो पृथ्वी कायकों में वो भी पर्याप्त में रहा ऐसा नहीं कहा। पर्याप्त में इतने उत्कृष्ट रह सकता है
नहीं।
संख्यात हजार वर्ष तक ही रहेगा लगातार पर्याप्त भी बना रहे तो भी देखो सूक्ष्म काय का प्रतिषेध करने के लिए बादर पद का निर्देश किया है। शंका एक कार रह गया सूक्ष्म का निषेध किस लिए किया जाता है। क्योंकि बादर का एक जीवों के योग से सूक्ष्म का एक जीवों का योग असंख्यात गुणा हीन होता है अतः उसके द्वारा प्रदेशों का ग्रहण होने पर जीव गुणित कर्मांश वाला नहीं हो सकता। दूसरे शेष एक इंद्रिय जीवों की आयु से बादर पृथ्वी का एक जीवों की आयु प्रायः संख्यात गुणी होती है इसलिए भी अपर्याप्त योग का परिहार करने के लिए बादर पृथ्वी का एक जीव में भ्रमण कराया है। ये क्या कहना चाहते समझ में आई। हाँ प्रतिभा आई देखो पृथ्वी कायकों की आयु लंबी है तो उसमें क्या वेरिएशन पड़ेगा?
संख्यात गुणा,
तो 22 यानी बारंबार मरण नहीं करना पड़े। बारंबार मरण होगा तो क्या होगा? हर एक भव में शुरू में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तो रहेगी कि नहीं रहेगी? तो उसमें योग छोड़ कम होगा। तो पर्याप्त में रहने का काल अधिक से अधिक हो, इसलिए बादर पृथ्वी कायिकों को लिया, क्योंकि वो तो 22,000 वर्ष एक भव की आयु है। तो इतने साल के बाद फिर अपर्याप्त अवस्था प्राप्त होगी उसके, इसलिए बारंबार उसके पृथ्वी कायिक को, बादर पृथ्वी कायिक को लिया। क्या फिर मैं इस वाक्य को पढ़ती हूँ। शेष एकेंद्रिय जीवों की आयु से बादर पृथ्वी कायिक जीवों की आयु प्रायः संख्यात गुणी है, प्राय लगभग, इसलिए भी अपर्याप्त योग का परिहार करने के लिए बादर पृथ्वी कायिक जीवों में भ्रमण कराया है। पृथ्वी कायिक जीवों के योग से त्रसकायिक जीवों का योग असंख्यात गुणा है। तथा उनके पर्याप्त काल से त्रस जीवों का पर्याप्त काल संख्यात गुणा और असंख्यात गुणा होता है। इसके सिवा बादर पृथ्वी का एक जीवों के संकलेश परिणाम से जितने द्रव्य का उत्कर्षण होता है, उससे असंख्यात गुणे द्रव्य का उत्कर्षण त्रसकायिक जीवों में होता है। अतः असंख्यात गुणे योग के द्वारा संख्यात गुणे और असंख्यात गुणे पर्याप्त काल में कर्म प्रदेश का संचय कराने के लिए और संकलेश परिणाम के द्वारा बादर पृथ्वी कायिक जीवों की अपेक्षा असंख्यात गुणे द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए सातिरेक यानी साधिक 2000 सागर तक त्रसकायिक जीवों में भ्रमण कराया है। हमें तो उत्कृष्ट स्थिति वाला लिया था 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से लास्ट में 2000 सागर त्रस में बिताना है और बाकी बचा काल बादर पृथ्वी कायिकों में लेना है। उसमें भी पर्याप्त उनका भव ज़्यादा है, लंबी लंबी आयु वाले होंगे, पर्याप्त का काल छोटा होगा, ये सब उसमें जो जो बातें बनती है, संकलेश अधिक बार होगा, उसमें उत्कर्षण होता रहेगा, क्योंकि उत्कर्षण 70 कोड़ा कोड़ी को पार तो नहीं कर सकता है, परंतु वहां तक का तो उत्कर्षण हो सकता है।
ये तो स्थिति भी कम होती जाएगी ना?
हाँ, मगर कम हुई तो भी 70 कोड़ा कोड़ी तक तो रह सकते हैं ना उसके नीचे। हाँ, ये पढ़ा अभी शंका 74 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। शंका, यदि बादर पृथ्वी कायिक जीवों की अपेक्षा त्रसकायिक जीवों का योग असंख्यात गुणा होता है और पर्याप्त काल भी संख्यात गुणा और असंख्यात गुणा होता है तथा उत्कर्षण द्रव्य भी असंख्यात गुणा होता है, तो गुणित कर्मांश वाले जीव को त्रसकायिक जीवों में ही कर्म स्थिति प्रमाण काल तक क्यों नहीं भ्रमण कराया? समझ में आई की बात? हाँ, क्योंकि त्रस पर्याय की काय स्थिति कर्म स्थिति प्रमाण नहीं है। ये काय स्थिति क्या होती है? निरंतर उसी पर्याय में रहने का काल। एक भव की बात नहीं, बारंबार त्रस मरकर त्रस होवे, उसको काय स्थिति कहेंगे। तो त्रस पर्याय की काय स्थिति कर्म स्थिति प्रमाण नहीं है, इसलिए कर्म स्थिति काल तक त्रसकायिकों में भ्रमण नहीं कराया है। शंका, तो त्रसों की काय स्थिति में अनेक बार भ्रमण क्यों नहीं कराया? ख्याल में आई बात? 2000 सागर प्राप्त कराओ एकाध भव एकेंद्री में, फिर 2000 सागर, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, देखो, क्योंकि काय स्थिति को समाप्त करके जो जीव एकेंद्रिय पने को प्राप्त हुआ है, वह जीव कर्म स्थिति काल के भीतर पुनः त्रसकाय स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता। क्या कहा? यहाँ क्या कहते हैं, काय स्थिति को समाप्त करके, यानी 2000 सागर पूरा भोग के इतना समय बिता कर जो जीव एकेंद्रिय में गया है, वह जीव कर्म स्थिति के काल के भीतर, यानी वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर के भीतर,
2000 सागर तक त्रस में नहीं,
जो 2000 सागर त्रस में बिताया, अब वह जीव त्रस काय स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता कर्म स्थिति काल के भीतर।
सो यहाँ पे इसे बता रहे हैं ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में एक ही बार ये 2000 सागर तक की स्थिति हो सकती है, वापस इतने लंबे काल तक वो त्रस में नहीं रह सकता।
हाँ, देखो काय स्थिति को समाप्त करके,
हाँ,
जो जीव एकेंद्रियपने को प्राप्त हुआ है,
हाँ,
है ना, वह जीव कर्म स्थिति काल के भीतर, 70 कोड़ा कोड़ी काल के भीतर
इतनी लंबी
पुनः त्रस काय स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता,
2000 सागर तक,
यानी फिर दोबारा जो जल्दी बाहर तो आ सकता है परंतु फिर उसको 2000 सागर की स्थिति नहीं मिलेगी, अल्प मिलेगी, समझ में। एक बार 2000 सागर बिताया उसने, पूरी कर दी और अभी एकेंद्रिय में गया, मान लेते हैं जल्दी निकल भी आया तो पूरे 2000 सागर उसके त्रस की स्थिति नहीं मिलेगी, यानी बारंबार उतनी नहीं मिलती। हाँ नहीं, पहले बहुत पहले पढ़ा भी था परंतु धौला में एक बार आए थी एक बार। हाँ, सबको नहीं मिलती और बारंबार भी 2000 सागर, ऐसा नहीं कि 2000 सागर बिताया एक इंद्रिय के दो चार पांच भोग कर दिए और फिर 2000 सागर प्राप्त हुए, 2000 नहीं मिलेगी उसको, एकाध थोड़े कम होंगे। ये तो पॉइंट, हाँ, उत्कृष्ट स्थिति, परंतु वो उत्कृष्ट स्थिति भी बारंबार नहीं होती। हाँ, इतनी स्थिति नहीं होगा, फिर एकेंद्रिय में गया है और जल्दी वापस लौटेगा तो उसकी पूरी 2000 नहीं मिलेगी उसको, अन्य तरह से की उत्कृष्ट काय स्थिति, काय स्थिति के बाद जो एकेंद्रियों में जन्मेगा और वहां से फिर त्रस होगा, तो उसके उत्कृष्ट स्थिति फिर नहीं मिलती। लिखा ना, फिर वो कर्म स्थिति के भीतर फिर दोबारा नहीं उसको, देखो फिर मैं इस वाक्य को पढ़ती हूँ, काय स्थिति को समाप्त करके, यानी 2000 सागर साधिक 2000 सागर त्रस में बिताकर जो जीव एकेंद्रपने को प्राप्त हुआ है, वह जीव कर्म स्थिति काल के भीतर पुनः त्रस काय स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता। त्रस की स्थिति को प्राप्त नहीं होता ये बात नहीं कही, समाप्त नहीं कर सकता है ने, फिर दोबारा उसको 2000 सागर वाली स्थिति प्राप्त नहीं होती, कब तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के काल के भीतर, अतः उसे पुनः एकेंद्रियों में प्रवेश करना होगा और ऐसा होने से कर्म स्थिति काल के अंदर वह जीव एकेंद्रिय पर्याय से निकल नहीं सकेगा। क्या कहा, यानी उसको एकेंद्रिय में कितना बार बिताना पड़ेगा फिर, हाँ, यानी अभी 2000 सागर त्रस में बिताया फिर एकेंद्रिय में चला गया तो उसके उतना बीच में एकाध भव मिला तो भी वो मैक्सिमम उसको एकेंद्रिय में बिताना पड़ेगा। हाँ, तभी तो उसको लिया, इसीलिए वहां ज्यादा काल बिताया ना। हमने क्या देखा, कर्म स्थिति माइनस त्रस स्थिति, उतना तो उसमें पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट ही वहां से लिया है, बादर एकेंद्रियों में बिताकर बाद में वो त्रस में गया था। हाँ, और उसका अंत की ओर के नरक के भव लिए थे, शुरू में से बादर एकेंद्रिय से शुरू किया था हमने। देखो क्या कहते हैं, अतः उसे पुनः एकेंद्रियों में प्रवेश करना होगा और ऐसे होने से कर्मस्थिति काल के अंदर वह जीव एकेंद्रिय पर्याय से निकल नहीं सकेगा। नहीं, क्या कहते हैं, पुनः एकेंद्रिय में प्रवेश करना होगा लिखा, यानी त्रस में से पूरी स्थिति करके एकेंद्रिय में गया है। मान लेते वो एकाद उसके थोड़े भाव मिल भी जाए तो वापस उसको एकेंद्रिय में जाना पड़ेगा, और फिर कर्म स्थिति के भीतर वो फिर ना एकेंद्रिय में से बाहर नहीं निकल सकेगा। और एकेंद्रिय पर्याय से न निकल सकने से उसके बहुत द्रव्य के संचय के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। इसलिए त्रसों की काय स्थिति में अनेक बार नहीं भ्रमण कराया है। ख्याल में आई बात? तैतीस सागर की स्थिति वाले नारकियों में यदि यह जीव निरंतर उत्पन्न हो तो दो बार ही उत्पन्न होता है, यह बतलाने के लिए। निरंतर का अर्थ होता है बीच में तो होगा ना तीरंज का भाव, वहां से निकलकर क्या होगा, तो एक भाव करके वापस जाएगा कि नहीं जाएगा?
नहीं जाएगा
ना? नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिंह आदि हिंस्रष वापद होगा, उसमें से उसको मनुष्य या तो मत्स्य होना पड़ेगा।
हाँ।
मनुष्य या मत्स्य जाते हैं वहां पर और फिर वहां चला जाएगा। तो यह बतलाने के लिए अंतिम नरक संबंधी तैतीस सागर की स्थिति को लेकर दो भाव ग्रहण करता है ऐसा कहा है। अतः यह वाक्य देशामर्शक है। अतः
नरक का भाव कंटिन्यूअस दो बार ही हो सकता है, यहाँ पे इसे बताया।
हाँ, कंटिन्यूअस दो ही बार होता
है। एक बार नरक से बाहर निकला और वापस नरक में जाएगा तो दो बार ही वो
सातवें नरक के दो ही बार होते हैं। हाँ, वो अभी वो भव परावर्तन में तैतीस सागर की करने के लिए बीच में कितना काल चला जाएगा उसका, लगातार तो होते नहीं है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, दो भव ग्रहण करता है। अतः यह वाक्य देशामर्शक है, अतः उसका ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि त्रसकाय स्थिति काल के भीतर बहुत बार तैतीस सागर की स्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, वहां उत्पन्न होना संभव न होने पर छठे नरक में उत्पन्न हुए, छठे में भी उत्पन्न होना संभव न होने पर पांचवे आदि नरकों में उत्पन्न हुआ। तो कहते शंकाकार, नारकियों में बहुत बार क्यों उत्पन्न कराया है? समाधान, तीव्र संक्लेश के द्वारा बहुत द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए बहुत बार नारकियों में उत्पन्न कराया है। जब जब उत्कर्षण होता है तो बंध की अपेक्षा होती है, तो जितना सत्ता में है उससे अधिक बंध होगा तो उत्कर्षण होगा ना, जो नीचे आए हुए परमाणु को फिर उत्कर्षण होता है, तो संक्लेश में स्थिति लंबी बनती है तो उसका उत्कर्षण भी होता रहेगा। लगातार दो बार, बीच में अन्य करके फिर दोबारा सातवें जा सकता है ना। शंका, अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़कर आयुबंध के योग्य अति संक्षेप काल के पूर्व अनंतरवर्ती अधस्तन समय में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामित्व देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अंतिम समयवर्ती नारकी हमने पहले देखा था, अंतिम समयवर्ती नारकी के उसका उत्कृष्ट होता है। अब कहते उसको क्यों लेते हो, उसके बदले किसको लेना है? आयु बंध के योग्य अति संक्षेप काल के पूर्व, यानी जघन्य आयु बंध काल, आयु बंध काल जो अंतर्मूर्त है वो भी छोटा लेना, और उसके पूर्व, पूर्व अनंतरवर्ती यानी इमीडिएट प्रायर अधस्तन समय में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि तदनंतर आयु का बंध होने पर आयु बंध के जघन्य काल प्रमाण मिथ्यात्व के समय प्रबद्धों के संख्यात्वे भाग के क्षय का प्रसंग आता है। क्योंकि जितना मिथ्यात्व का द्रव्य है वहाँ आयु बंध के काल में क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ज्यादा में होता है,
हाँ,
तो आय से व्यय ज्यादा हो जाएगा, ये सब कहते हैं। उदय तो सबका निरंतर चल रहा है और बंध हमेशा सात का होता है, बराबर, और यहाँ तो आठ का बंध होगा तो मिथ्यात्व के खाते में कम आ जाएगा। क्या कहा फिर शंकाकार क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़कर आयु बंध के योग्य अति संक्षेप काल के पूर्व अनंतरवर्ती अधिष्ठान समय में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि तदनंतर आयु का बंध होने पर आयु बंध के जघन्य काल प्रमाण मिथ्यात्व के समय प्रबद्धों के संख्यात्वे भाग के क्षय का प्रसंग आता है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि आयु बंध के काल से संख्यात गुणे ऊपर के विश्राम काल में संचित होने वाला द्रव्य नष्ट हुए द्रव्य से संख्यात गुणा पाया जाता है। नरक में जब आयु बनती है तो हमेशा आयु बनने के बाद एक अंतर्मूर्त चला जाता है, फिर मरण आता है। शंकाकार ने पूछा था आयु बंध के पूर्व वाला समय ले लो, तो कहते आयु बंध के काल में जितना उसका लॉस हुआ है उसके पश्चात वाले जितने समय है उसमें उसका गेन ज्यादा है। यहाँ कहा ना कि नष्ट हुए द्रव्य से संख्यात गुणा पाया जाता है। विश्राम काल, विश्राम काल ने आयु बंध के बाद जितने काल तक मरण नहीं होगा उसको कहेंगे विश्राम काल। तो विश्राम काल में जो संचित हुआ द्रव्य है वह आयु बंध के काल में नष्ट हुए द्रव्य से संख्यात गुणा पाया जाता है। तो कहते हैं आयु बंध के काल से जघन्य विश्राम काल संख्यात गुणा है, यह किस प्रमाण से जाना? यदि ऐसा न होता तो नारकी के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश के स्वामित्व का कथन न करते। ख्याल में यह क्या कहना चाहते हैं? आयु बंध का जितना काल है उससे संख्यात गुणा काल विश्राम का काल है, उसके बाद उसका मरण होगा। जैसा वेदना खंड में उपसंहार किया है वैसा ही यहाँ कहना चाहिए। ये वेदना खंड में हमें गुणित कर्मांशिक क्षपित कर्मांशिक की बात धवला में भी पढ़ी थी, वहां भी ये बातें आई थी ना।
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आयु बंध के काल से जो विश्राम काल है वो संख्यात गुना है, यानी आयु बंध होने में एक अंतर मुहूर्त लगता है,
हाँ।
और उसके बाद विश्राम काल उससे भी अधिक है,
वो बड़ा अंतर मुहूर्त,
यानी जो इसको हम कहेंगे क्षुद्र भव है उसके भी वनथर्ड आयु में आयु बंध होता है। जो आयु है उसके
वनथर्ड के पहले अंतर मुहूर्त में,
हाँ, पहले अंतर मुहूर्त में होता है, तो उसके बाद भी वो जो अंतर मुहूर्त रहेंगे वो उससे बड़ा काल रहेंगे।
अब विशेष उत्कृष्ट प्रदेश संचय के लिए छह बातें आवश्यक बताई हैं। देखो यहाँ ही विस्तार से बताया है, भवाद्धा अध्ययन काल, आयु, देखो उसमें आवास भी कहा था, भवावास, आयु आवास, याद है पहले ये छह शब्द आए थे। तो भवाद्धा, आयु, योग, संकलेश, उत्कर्षण और अपकर्षण, इन्हीं छह आवश्यक कारणों को ध्यान में रखकर उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के स्वामित्व का कथन किया है और बताया है कि क्यों बादर पृथ्वी का एक जीव में उत्पन्न कराकर त्रस काय में उत्पन्न कराया है। त्रसों में नरक गति में संकलेश कले करना परिणाम अधिक होते हैं, अतः बार बार जहां तक शक्य हो वहां तक नरक में उत्पन्न कराया है। सातवें नरक में लगातार दो बार ही जीव जन्म ले सकता है, अतः दूसरी बार सातवें नरक में 33 सागर की स्थिति लेकर उत्पन्न हुए उस जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामित्व बतलाया है। किंतु किसी किसी उच्चारणा में उक्त अंतिम समय से नीचे अंतर्मूर्त काल उतर कर उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है। उसका कहना है कि जिस काल में आयु का बंध होता है उस काल में मोनी कर्म के बहुत से निषेकों का क्षय हो जाता है। इसी को लेकर शंकाकार ने शंका की है, अंतिम समय के बदले में आयुबंध काल के नीचे के समय में उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं कहा। इस शंका का समाधान यह किया गया कि यद्यपि आयुबंध काल में मोनी के बहुत से समय प्रबंधों का नाश हो जाता है, फिर भी उसके ऊपर के विश्राम काल में उसके अधिक समय प्रबंधों का संचय हो जाता है, क्योंकि आयुबंध काल से विश्राम काल संख्यात गुणा है। अतः अंतिम समयवर्ती नारकी के ही उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। अब तक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्वामित्व किसको है, इसकी बात उन्होंने बता दी। अब यहीं रुकते, आगे का सूत्र कल देखेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो। अश्विन भाई,
नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रानम नमो लोहे।